आज जो सब्जेक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है होम साइंस और टॉपिक है घर में सुरक्षा। इस टॉपिक पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संध्या कुमार जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका।
धन्यवाद आपका जी। देखिए, सुरक्षा तो हम सबको चाहिए होती है, हर जगह हर समय हम चाहते हैं कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें। लेकिन अगर हम अपने पाठ की बात करते हैं तो गृह विज्ञान में ये 13वां पाठ है माध्यमिक स्तर पर, जो हमारा विषय है उसमें, जिसका शीर्षक घर में सुरक्षा। अब सुरक्षा तो व्यक्ति को हर जगह चाहिए होती है, कई प्रकार की सुरक्षा चाहिए होती है। अगर हम सोचें तो हमें एक शारीरिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर को फिजिकली कोई नुकसान ना हो, कहीं चोट ना लगे, कहीं और भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो, तो ये तो सब लोग ध्यान रखते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई प्रकार की सुरक्षा की जरूरत होती है। जब घर में बच्चे छोटे होते हैं तो सिक्योरिटी अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इस बात का बहुत हमें ध्यान रखना होता है कि हमारे बच्चों का, पास पड़ोस में जो बच्चे हैं उनका कोई यौन शोषण ना करे, उनकी सुरक्षा रखें, हम उनका ध्यान रखें। एक और तरह की सुरक्षा हमें जरूरत होती है, वो है भावनात्मक सुरक्षा, यानी इमोशनल सिक्योरिटी। आज जिस दौर से हम सभी लोग गुजर रहे हैं, जब हम लोग अपने घर में बंद हैं और खासकर जो हमारा युवा वर्ग है, जो घर में तो बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करता है और उनका दिल लगता है कि वो अपने दोस्तों से मिले, उनसे बातें करें और उनके साथ मौज मस्ती करें, इस वर्ग को जब हमने घर में कैद कर दिया है और वो अपने दोस्तों से, सखियों से मिल नहीं पा रहे हैं, तो जो भावनात्मक आइसोलेशन वो इस समय फेस कर रहे हैं वो बहुत ही घातक है, और उससे उनको कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में भी परिवार को और जो उनके आसपास बड़े लोग हैं उनको सोचना चाहिए इसके बारे में। तो सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे आयाम हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम आज इस चर्चा में जिस की बात करेंगे वो है कि घर में हम अपने आप को, अपने परिवारजनों को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले देखिए, ये जो चर्चा आप सुनेंगे आज मेरे साथ, आप लोग बातें करेंगे, उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो इस बात पे बात करते हैं कि इसके अंत में आप अपने घर का आकलन कर पाएंगे कि कहां पर वो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर दुर्घटना हो सकती है और असुरक्षा हो सकती है परिवार के लोगों के लिए। उन जगहों को संभालने के लिए या उनको ठीक करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, और अगर आवश्यकता पड़ती है, किसी को दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है कोई व्यक्ति अगर, तो उसको आप प्राथमिक उपचार कैसे दे सकते हैं। तो आप ये भी समझेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, उसको आप कैसे दे सकते हैं, उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं कि घर में कैसे असुरक्षा हो सकती है, आपकी सुरक्षा कैसे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अब देखिए, एक सिनेरियो लेते हैं जहां सुबह आपको घर में सब काम खत्म करके तैयार होकर के ऑफिस के लिए निकलना है, तो आप बहुत जल्दी जल्दी रसोई में काम कर रहे हैं, पता चला दूध आपने रखा है गैस पर उबलने के लिए, वो उफन गया, वो निकलने लगा, जब वो निकला तो आपने जल्दी से एक कपड़ा उठाया कि बर्तन को, दूध के भगोने को आप गैस पर से उतार दें, तो वो कपड़ा जो था वो लौ में आ गया और वो जलने लगा, और जल्दी जल्दी क्योंकि आप कर रहे थे आपका हाथ जल गया, आपने, खैर कोई बात नहीं, थोड़ी देर पानी में रखा, उसको ठीक कर लिया, आप अपना काम करते रहे, फिर देखा आप जल्दी जल्दी सब्जी काट रहे हैं तो आपकी उंगली में चोट लग गई, कट गई उंगली, वहां से खून रिसने लगा, उधर आपने देखा कि प्रेस के लिए आपने कुछ कपड़ा, आपको प्रेस करना था, आपने प्रेस गर्म की थी और वो कपड़ा जल गया, तो वहां पे जो है धुआं निकलने लगा। तो ये बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं कि जब आप हड़बड़ी में काम करते हैं तो ये अक्सर इस तरह के चीजें हो जाती हैं घर में जो छोटे मोटे स्तर पर हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हल्का सा जल गया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन यही चीजें अगर हम ध्यान ना दें तो बहुत बड़ी हो जाती हैं और काफी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो दुर्घटना जो है किस प्रकार की होती है? एक तो यह है कि गिरने से दुर्घटना हो सकती है, आपको चोट लग सकती है, आपके घर में आग लग सकती है, आपके हाथ या पैर में या शरीर के किसी भी भाग में कट सकता है जिससे ब्लीडिंग हो सकती है, रसोई में काम करते हुए आप जल सकते हैं, या जैसे मैंने कहा प्रेस से अगर आप काम करें, कपड़े प्रेस कर रहे हैं तो उससे भी जो है जल सकते हैं, पॉइजनिंग हो सकती है, कभी आप गलती से दवाइयां अगर आपने खुले में छोड़ दी हैं और घर में कोई छोटा बच्चा है जो जिसको ज्ञान नहीं है, उसने अगर वो दवाइयां खा ली या कोई और चीज उसने पी ली, दवाई उठाकर पी ली, तो उससे उसको पॉइजनिंग हो सकती है। मधुमक्खी के या किसी जानवर के काटने से भी चोट लग सकती है, उससे भी बहुत नुकसान होता है। आप जब अपने घर में बिजली के उपकरणों का प्रयोग करते हैं, कभी खराब हो जाते हैं, आप अपने आप ठीक करते हैं, या पता चला कि आपके पास में प्लग नहीं है तो आपने तार को जरा सा छील के उसे ही प्लग में घुसा करके काम करने की कोशिश की तो शॉक लग सकता है। इन सब चीजों से आपको क्षति हो सकती है, आपको नुकसान पहुंच सकता है। कई बार खाते खाते जो है चोकिंग हो जाती है, सांस आने में दिक्कत होती है या सांस आना बंद हो जाता है, उससे भी मुश्किल हो जाती है। तो ये सब ऐसे उदाहरण हैं जिनसे घर में रहते हुए भी आप ये सोच रहे हैं कि आप तो सुरक्षित अपनी चार दीवारी में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि अधिकांश ये दुर्घटनाएं जो होती हैं इनसे हम बच सकते हैं अगर हम ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और जागरूक रहें कि किस चीज से क्या नुकसान हो सकता है, तो इन दुर्घटनाओं से आराम से हम बच सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि दुर्घटनाएं होती क्यों हैं। अब अगर सबसे पहले बात करें कि गिरने से दुर्घटना हो सकती है, तो गिरने के लिए क्या वो हो सकता है? देखिए, या तो बच्चे छोटे हैं, घर में उनके खिलौने बिखरे पड़े हैं, या बिजली के तार जो हैं वो इधर से उधर जा रहे हैं, आपने टीवी में केबल का कनेक्शन किया है उसका भी तार नीचे जा रहा है, आपने कोई एक्सटेंशन बोर्ड लगाया उसका तार जा रहा है, या तो क्या होता है कि जब हम चलते हैं और फर्श पे कुछ चीजें पड़ी होती हैं तो उनके ऊपर हम ठोकर खा के गिर सकते हैं, या अगर तार है तो उसमें पैर उलझ सकता है और हम गिर सकते हैं, या अगर कभी असावधानी से कहीं पानी गिर गया या कोई और तरल पदार्थ लिक्विड जो है गिर गया और हमने उसे एकदम से नहीं पहुंच के साफ किया तो उस पर भी पैर फिसल सकता है, हम रपट सकते हैं और गिर सकते हैं। तो गिरने से जो है बहुत भारी नुकसान होता है। और एक जगह ऐसी है जहां पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, वो है घर में जो सीढ़ियां होती हैं ऊपर जाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए आपका दो मंजिला मकान है और आपके घर के अंदर से सीढ़ियां जा रही हैं, तो अक्सर टेंडेंसी क्या होती है कि कुछ सामान हमें रखने की जगह नहीं मिल रही है तो फिलहाल इसे सीढ़ी पे रख देते हैं, सीढ़ियों पे वो सामान भरता जाता है। और अगर हमने सीढ़ियों में जीने में अच्छी तरह से लाइट नहीं लगा रखी है तो अंधेरे में उस सामान के ऊपर से भी हम गिर सकते हैं ठोकर खा के, तो वहां पे गिरने का बहुत खतरा रहता है। एक और बात आप ध्यान दीजिए कि कई बार हम देखते हैं कि जब घर बनते हैं तो छत पर जो है लोग मुंडेर नहीं बनवाते हैं। अब जब बच्चे इस छत पर खेलते हैं या मान लीजिए कोई बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं तो असावधानी से वो नीचे गिर सकते हैं। तो और एक जगह बहुत अहम होती है, सोचिए कहां पर जो है अक्सर लोग गिरते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो है घर में जो बाथरूम होता है। अब बाथरूम में जगह तो छोटी होती है और कई सारी चीजें होती हैं, तो एक WC भी होगा, एक वॉश बेसिन भी होगा, नहाने के नल भी लगे होंगे, एक बाल्टी और स्टूल भी रखा होगा। तो छोटी जगह में जब इतनी सारी चीजें होती हैं और फर्श गीला होता है तो गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन सब जगहों को जो है आप देखिए अपने घर में, ये जो मैंने ये सारी चीजें बताई, आपके घर का फर्श है, आपके घर में जो जीना है उसे देखिए, जो आपका बाथरूम है वो देखिए, इन सब चीजों को आप देखिए कि कहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो छत पर मुंडेर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो रेलिंग लगवाने की कोशिश करिए। सीढ़ियों में अच्छी आप रोशनी रखिए, उसको साफ सुथरा रखिए। फर्श पर कोई चीज पड़ी ना हो इसका ध्यान रखें आप। तो ये सब चीजें जब आप ध्यान रखेंगे तो गिरने से जो एक्सीडेंट होता है उसको आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। अब अगले उस पर आते हैं हम कि कटने से बहुत ज्यादा जो है चोट लग सकती है और नुकसान हो सकता है। तो अब कट जो है या कहीं पर हमारा होता है तो वो कौन सी जगह है या कौन सी चीजें हैं जिससे कट लग सकता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे पहले तो आप अगर घर में बच्चे हैं तो उनके खिलौनों को देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है खिलौनों में कहीं पर कोई नुकीला भाग होता है, कोई कोना निकला होता है जिससे बच्चों को चोट लग सकती है, उनको उनकी ब्लीडिंग हो सकती है, है ना। तो बच्चों के खिलौने बहुत ध्यान से देखिए, वो सॉफ्ट होने चाहिए और कहीं पर भी कोई नुकीला पार्ट नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा पार्ट निकला हुआ नहीं होना चाहिए जिससे जो है बच्चों को चोट लग जाए। फिर आप देखिए अपने घर में जो फर्नीचर है, मेज है, कुर्सी है, अलमारियां हैं, किचन में ड्रॉर्स हैं, बेडरूम में अलमारियां हैं, उनको देखिए कि वहां पर तो कोई टूट फूट नहीं हो गई है। कई बार क्या होता है ड्रॉर्स जो हैं थोड़ी सी ढीली हो जाती हैं, लटक जाती है, उनका कोना निकला होता है। तो उस कोने से जो है दो चीजें होती हैं, एक तो हमारे कपड़े भी फटते हैं वो नुकसान होता है, और अगर हमारा हाथ या पैर उसमें लगता है तो उससे भी बहुत गहरी चोट कई बार लग जाती है। तो जो ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने में बड़ी परेशानी होती है। तो ये ध्यान रखिए कि फर्नीचर कहीं पर आपके घर में टूट फूट में ना हो और वो बिल्कुल रिपेयर आप करवा लीजिए। अगर कहीं पे नुकीली कील भी निकली हुई है तो उसको ठोक करके ठीक कर लीजिए। देखिए छोटी मोटी चीजें हैं, आप अगर इनका ध्यान रखेंगे तो आप इन एक्सीडेंट से बच सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात होती है कि अब हम लोग जो है घर में क्रॉकरी यूज करते हैं तो बड़ा दर्द आता है कि अरे ग्लास में जरा सा चटका ही तो है, कोई बात नहीं, इसे अभी तो चल रहा है, टूटा थोड़ी है। लेकिन ये जो चटका हुआ ग्लास होता है या कप होता है या कप के नीचे रखने वाली जो सॉसर होती है, ये अगर चटक गए हैं तो इनको तुरंत आप हटा दीजिए, क्योंकि इनसे जो है कभी भी आपको चोट लग सकती है। और कहाँ चोट लग सकती है, कैसे कट सकता है आपका हाथ? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, चाकू से, चाकू और फोर्क जो हमारे घर में होते हैं उनसे बहुत भयंकर रूप से जो है हमें चोट लग सकती है। तो ध्यान रखें कि अगर आप चाकू को अपने ड्रॉअर में रख रहे हैं तो चम्मचों के साथ ना रखें, उन्हें अलग से रखें। अगर आप किसी को पकड़ा रहे हैं तो हैंडल की तरफ से उसको पकड़ने के लिए दीजिए, जिससे उसके हाथ में चोट ना लगे पकड़ने से। और जैसे बच्चे होते हैं ना, कई बार आ जाते हैं मम्मी के पास में कि मम्मी पेंसिल तेज करनी है, इसकी नोक बनानी है, और मम्मी कहती है कि क्या करें क्या करें, लो चाकू से इसको बना लो। तो वो बहुत ही गलत बात है। पेंसिल को की नोक बनाने के लिए पेंसिल कटर होता है, शार्पनर होता है, उसका प्रयोग करें और चाकू जो है बच्चों को ना दें, क्योंकि बच्चों को एक तो यूज करना नहीं आता है और अगर तेज होता है तो उससे बड़ी जल्दी चोट लग सकती है। अच्छा, मैंने तेज चाकू की बात की, यहां पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपका चाकू ब्लंट हो गया है या जिसे हिंदी में कहते हैं मोथरा हो गया है, तो उससे आप जो है काम ना करें। अब ये देखिए उल्टी बात मैंने कह दी, तेज चाकू से तो हाथ कट सकता है और जो ब्लंट हो गया है चाकू उसको आप प्रयोग ना करें। हाँ, मैं इसलिए कह रही हूं कि जब चाकू ब्लंट हो जाता है तो वो सब्जी ठीक से नहीं काटता है, उसमें आपको अधिक प्रेशर लगाना पड़ता है, जोर ज्यादा लगाना पड़ता है आपको काटने के लिए। और जब आप ज्यादा जोर लगाते हैं तो अगर असावधानी हुई तो आपको आपका हाथ जितना कटेगा वो बहुत बुरी तरह से कटेगा। इसलिए हमेशा चाकू की धार पैनी रखिए और उसको कम प्रेशर के साथ में आसानी से अपनी सब्जियां काटने के लिए, फल सब्जी काटने के लिए आप प्रयोग करिए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर घर में कांच टूट जाता है तो उसे आप कैसे उठाते हैं? हाँ, झाड़ू और डस्टपैन से तो उठा सकते हैं, लेकिन कई बार इतना बारीक वो टूटता है कि वो झाड़ू से नहीं उठता है। इस केस में क्या करेंगे आप? इस केस में आप कोई गीला कपड़ा करिए, कपड़ा जो आप लीजिए उसको गीला कर लीजिए और उससे आप उस कांच को समेटिए। अगर और भी अच्छी तरह से आप करना चाहते हैं तो गीले आटे की एक लोई लीजिए और उसको फर्श पे घुमा दीजिए, तो क्या होगा, वो गीला आटा जो है उसमें सब वो कांच के जो बारीक बारीक टुकड़े हैं, जो बिल्कुल चूरा सा हो गया है, वो चिपक करके आ जाएगा और आप उसे आसानी से फेंक सकते हैं। तो आई बात समझ में कि अगर आप इन सावधानियों को रखेंगे तो जो कट आपके हाथ में लग सकता है जिससे दुर्घटना हो सकती है, अरे देखिए कटने की बात पे मैं भूल गई, एक तो बहुत अहम बात यह है, जब आप खिड़की खोलते हैं तो आप क्या पकड़ के खोलते हैं? आपको खिड़की का फ्रेम पकड़कर खिड़की खोलनी चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चे बड़े जोश में आते हैं, हम खिड़की खोलेंगे हम खिड़की खोलेंगे, और वो कांच पर जो है, जो खिड़की में कांच लगा होता है उस पर हाथ लगा के जोर लगाते हैं, उससे खोलते हैं, और अगर कांच जरा भी कच्चा होता है तो बच्चे का हाथ उसमें घुस जाता है, आपका भी हाथ घुस सकता है, कांच टूट सकता है, और तब जो कट लगता है वो इतना बुरा होता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हाथ में जो मेजर आर्टरीज हैं वो डैमेज हो सकती हैं। तो ध्यान रखिए, हमेशा खिड़की खोलते हुए आप उसके फ्रेम को पकड़कर खोलें, ना कि उसके कांच पर जोर डालकर। तो दो बातों की हमने बात की, एक तो घर में गिरने से जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनसे कैसे बचे, और घर में अगर हम काम कर रहे हैं तो कटफट जो हो जाता है हम लोगों का उससे हम कैसे बचें। अब बात आती है, जब आप काम करते हैं तो कई बार हाथ जल जाता है या पैर जल जाता है, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं? भाई रसोई में काम करेंगे तो होता ही है, कई बार जो है हाथ लग जाता है, आपका गरम बर्तन से हाथ लग जाता है, तवे से हाथ लग जाता है, या कई बार आप जब तल रहे हैं कुछ तो गरम तेल जो है आपके ऊपर छिड़क जाता है, या माचिस से अगर बच्चे खेलते हैं तो उससे भी जो है बच्चों को नुकसान होता है। और कई लोग क्या करते हैं, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, लापरवाही से वो जलती हुई बीड़ी या सिगरेट को कूड़े के ढेर पर फेंक देते हैं। हम तो बीड़ी पी चुके, सिगरेट पी चुके, खत्म हो गई, अब उसको बुझाए बिना कूड़े के ढेर पे फेंक दिया, अब वहां आग लग गई, है ना। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो भी हम लापरवाही करते हैं और उससे आग लग सकती है। और हम क्या करते हैं, घर में किचन में खासकर होता है कि प्लग पॉइंट एक ही है और हमें एक ही बार में अपनी इलेक्ट्रिक केटल भी चलानी है और मिक्सी का भी प्रयोग करना है, तो एक ही सॉकेट में हम दो या उससे ज्यादा उपकरण चलाने का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि ओवरलोड हो जाता है, जिससे वो सॉकेट गर्म हो जाता है और वहां आग लग सकती है, तो उससे भी जो है हम जल सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि जब हम स्टोव पे से, गैस पे से या स्टोव पे से कोई बर्तन उतारते हैं और उसको उतारने के लिए कपड़े का प्रयोग करते हैं, तो वो कपड़ा भी आग पकड़ सकता है, जिससे हम जल सकते हैं। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत आराम से आप जलने से बच सकते हैं। अब जब हम गैस की बात करते हैं तो एक और बहुत बड़ा एक्सीडेंट कई बार होता है जिससे हम बहुत आराम से बच सकते हैं, और वो है कि गैस सिलेंडर लीक करने लगता है। जब गैस सिलेंडर लीक करने लगता है तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं, माचिस चला के तो बिल्कुल मत देखिएगा कि सिलेंडर लीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको जरा सी भी बदबू आ रही है तो सबसे पहले उसकी जो कैप होती है, सिलेंडर बंद करके उसका रेगुलेटर हटा करके सिलेंडर के ऊपर उसकी कैप लगा दीजिए, सारे खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, और अगर हो सकता है तो सिलेंडर को बाहर खुले में रख दीजिए। अगर आपके यहां पाइप्ड गैस है और पाइप गैस में भी आपको ये लग रहा है, जरा सा भी सस्पेशन है कि ये लीक कर रहा है, तो आप जो इनकमिंग वाल्व है मेन वाल्व उसको बंद कर दीजिए और जो सर्विस प्रोवाइडर है आपके यहाँ जो गैस का वो देखता है उसको तुरंत फोन करिए, वो आकर के चेक करेंगे, तब तक आप गैस का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, सावधानियां हैं, आप रखेंगे तो बहुत आराम से जिंदगी कटेगी और लापरवाह होंगे तो बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है ना। तो इन बातों को आप ध्यान रखें। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके घर में आग लग जाती है तो क्या करेंगे? तो आपको ये करना है कि अगर बिजली के कारण आग लगी है तो उसे पानी से बुझाने का बिल्कुल प्रयास ना करें, ठीक है? अगर आप पानी डालेंगे तो और भी ज्यादा जो है उसमें आग बढ़ सकती है और आपको भी शॉक लग सकता है। तो रेत से बुझाने का प्रयास करें, या अगर आपके अपने कपड़ों में आग लग गई है तो दौड़े नहीं, बिल्कुल भी घबराए नहीं, आप किसी मोटे कपड़े को अपने ऊपर लपेटे, जिससे क्या होगा, आग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग बुझ जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी आग, है ना। और इस तरह से अगर आप कभी ऐसे घर में या कमरे में फंस गए हैं जहां पर आग है, बहुत बड़ी आग लग गई है और धुआं ही धुआं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने मुंह पर जो है कोई गीला कपड़ा बांध लीजिए और फर्श पे बिल्कुल नीचे रेंगते हुए आप बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि क्या होता है, धुआं गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठता है और ठंडी हवा जिसमें ऑक्सीजन होती है वो नीचे बैठी होती है। तो आप नीचे रहेंगे, जितना नीचे रहेंगे, फर्श के पास रहेंगे, उतना ही आप जो है अपने आप को बचा पाएंगे। अब हम बात करते हैं पॉइजनिंग की। देखिए, बहुत सी ऐसी जगह होती हैं, बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहां पर पॉइजनिंग का खतरा होता है। जरा सी आपकी सावधानी कम हुई और दुर्घटना हुई। तो अगर आपने किसी खाद्य पदार्थ की बोतल में जो खाली हो चुकी है, मान लीजिए सॉफ्ट ड्रिंक की कोई बोतल है, उसमें आपने एसिड या फिनाइल या कोई भी क्लीनिंग एजेंट, फ्लोर क्लीनिंग एजेंट जो होता है वो भर के रख दिया है और किसी बच्चे के हाथ वो बोतल पड़ जाती है और वो उसे पी लेता है, तो कितना नुकसान होगा, वो एसिड होता है। सोचिए अगर एसिड पिया जाए तो कितना नुकसान होता है। इससे आप बच सकते हैं, दो चीजें करिए। एक तो किसी भी खाने पीने की चीज की जो बॉटल है या कंटेनर है, डब्बा है, वो अगर खाली हो जाता है तो उसमें इस तरह के पॉइजनस प्रोडक्ट्स आप बिल्कुल ना रखें, उनको उनके ओरिजिनल पैकिंग में ही रखें। और दूसरा कि बच्चों के पहुंच से ये सारे प्रोडक्ट्स आप बिल्कुल दूर रखें, जब उनके हाथ ही नहीं आएगा तो उनको नुकसान नहीं हो सकता है। इसी तरह से घर में जो दवाइयां होती हैं, कई बार हम उनको टेबल पर छोड़ देते हैं, हमने दवाई खाई और उसको वहीं टेबल पे छोड़ दी। अब बच्चा आया, उसे तो पता नहीं है, कई बार दवाइयों की भी बड़ी आकर्षक पैकिंग होती है, अगर उसने सोचा कि ये टॉफी है और टॉफी समझ के खा ली तो सोचिए कितना नुकसान हो सकता है। तो इससे आप बचिए, सावधानी रखिए। अगर आप इतनी छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखते हैं, जैसे दवाइयों को अलमारी में रखें, नीचे ना रखें, कहीं खुले स्थान पर ना छोड़ें, और इस तरह से जो है आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप सभी बच सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अब देखिए, घर में ये सब आपने कर लिया, लेकिन मधुमक्खियां आ गई, मधुमक्खी ने काट लिया, या आप बच्चे बाहर खेल रहे हैं, आप खुद जो है पिकनिक पे गए हुए हैं, पेड़ पौधों के बीच में हैं, वहां पे ततैया ने काट लिया, या बच्चे जब सोसाइटी में नीचे खेलते हैं, कई बार स्ट्रीट डॉग्स होते हैं तो कभी कुत्ते ने काट लिया, होते हैं ऐसे इंस्टेंसेस, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते हैं, और इन पर आपका कोई कंट्रोल भी नहीं है। मान लीजिए आप घूमने गए हुए हैं बाहर, वहां पे बंदर बहुत हैं, अगर आप जाएंगे जहां पर पहले बहुत घने जंगल हुआ करते थे, अब वहां पे शहर बस गए हैं, तो बंदर आ जाते हैं उन शहरों में और खाने के फिराक में रहते हैं, वो खाना ढूंढते हैं, तो अगर उन्होंने आपको अटैक किया, आपके ऊपर आक्रमण किया और काट लिया, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को बचा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको ये पता है कि कुत्ते के या बंदर के काटने से रेबीज जैसी बीमारी हो सकती है, तो आप लापरवाही नहीं करेंगे, आप तुरंत डॉक्टर के पास में जाएंगे, उसका जो उपचार होगा वो उपचार करेंगे, पूरा ट्रीटमेंट करेंगे और अपने आप को बचाएंगे। अगर मधुमक्खी या किसी इसकी ततैये के काटने से डंक लग गया है, तो भी आप डॉक्टर के पास जाके वो डंक निकलवाएंगे, उसका उपचार करेंगे और अपने आप को सुरक्षित करेंगे। तो ये छोटी बातें हैं, इनका ध्यान दीजिए। अब अक्सर देखिए, मैं तो देखती हूं घरों में लोग क्या करते हैं कि बिजली के उपकरणों में बड़ी लापरवाही करते हैं। एक तो देखिए, जब घर हमारा बहुत नया होता है ना, तो नई वायरिंग होती है, सब कुछ अच्छा होता है, बहुत बढ़िया चलता है। लेकिन जब कुछ साल बीत जाते हैं तो वो जो बिजली के तार होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, उनकी लाइफ ओवर हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो सेंसिबल तो ये होता है कि हम उनको, उन तारों को बदल दें, बदलवा लें, ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रखें। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, अरे अभी तो चल रहे हैं, अभी क्या जरूरत है, कुछ होगा तो देखेंगे। अब कुछ होगा तो देखेंगे में ही परेशानी हो जाती है। जब कुछ होता है तो वो इतना बड़ा होता है कि उससे उबर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये ध्यान रखिए कि कहीं पर आपके अगर बिजली के तार हैं घर पे, तो वो कटे फटे ना हो, पुराने ना हो, उनको आप बदल डालिए। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी बिजली के उपकरण आप प्रयोग कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों, ISI मार्क वाले हों, ताकि आपको पता है कि उनकी क्वालिटी अच्छी है तो उनके अंदर कोई खराबी नहीं होगी और आपको शॉक नहीं लगेगा। अब कई बार क्या होता है कि हमें तार एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना होता है, तो हम दरवाजे के ऊपर से निकाल लेते हैं या खांचों में से निकाल लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि दरवाजा बार बार खुलने बंद होने से वो तार जो है कटने लगता है और वहां से शॉर्ट सर्किटिंग हो सकता है। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो बिजली के उपकरण हम घर में यूज करते हैं, उसका जो तार होता है या जो प्लग पॉइंट होता है, उसमें अर्थिंग नहीं होती है, अर्थ का कनेक्शन नहीं होता है, तो उससे भी जो है शॉक लग सकता है। और बहुत भयंकर रूप से जो है कई बार शॉक लगता है, झटका लगता है, और जब बहुत ज्यादा तेज झटका लगता है तो मृत्यु तक हो सकती है। तो ये स्थिति कभी ना आने दें आप घर में। अगर देखिए घर में छोटे बच्चे हैं और दीवार में नीचे की तरफ जो है कई बार हम प्लग पॉइंट्स लगवा देते हैं, तो ध्यान रखें कि या तो एक डड जो बिल्कुल वैसे बेकार पॉइंट होता है, वो होता है प्लग होता है, उसमें लगा करके और उस पॉइंट को आप बंद करके रखें, या आप उस पे सुरक्षात्मक जो टेप होता है, बिजली का टेप, वो चिपका दीजिए, और इस तरह से जो है बच्चों की आप सुरक्षा करिए। तो बिजली के यूज में भी आप घर में आप देखिए कि कहाँ कहाँ पर जो है परेशानी हो सकती है, उन सब जगहों को, उन सब पॉइंट्स को आप ठीक करवाएं, बिजली के तार बदलवाएं और अपना ध्यान रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें। अब एक चीज और मैं बात करूंगी कि कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि दम घुटने से जो है लोगों की मृत्यु हो जाती है। अच्छा भला खाना खा रहे हैं, खाते खाते एकदम से चोकिंग होने लगी, कुछ इतना बड़ा गुस्सा खा लिया कि वो आपके फूड पाइप में अटक गया और आप सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। जब सांस नहीं आ रही तो बहुत परेशानी होती है, एकदम से छटपटाहट होती है। तो हमेशा जो है, और अच्छा ये तो बड़ों की बात हुई, लेकिन छोटे बच्चों के साथ क्या परेशानी होती है कि कई बार वो खेल खेल में नाक में कुछ ऐसी छोटी सी चीज फंसा लेते हैं या कुछ सटक लेते हैं जिससे उनकी सांस आनी बंद हो जाती है। ये बहुत भयंकर चीजें होती हैं और हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो खिलौने हम बच्चों को खेलने के लिए दे रहे हैं उनमें छोटे छोटे कोई भी भाग ऐसे ना हो जो वो अलग कर सकें और अपने आप अपने मुंह में या नाक में फंसा सके। और आजकल पॉलिथीन बहुत ज्यादा घर में प्रयोग होता है, आप बाजार जाते हैं, कोई भी सामान लाते हैं, पॉलिथीन जरूर आपको मिलता है। इस पॉलिथीन से जब बच्चे खेलने लगते हैं तो उससे भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। कई बार खेल खेल में बच्चे जो हैं उस पॉलिथीन को अपने सर पर ओढ़ लेते हैं और बंद कर लेते हैं, कस लेते हैं, जिससे सांस आना बंद हो जाता है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो दम घुटता है। तो इस बात का ध्यान रखें। और एक बात मैं कहूंगी कि सर्दी के मौसम में हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम एक छोटी सी अंगीठी जला करके कमरे में रख लें, जिससे हमें गर्माई मिलती रहती है, सारा कमरा हमारा गर्म हो जाता है। अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये करें तो हमेशा ध्यान रखें कि कोई ना कोई खिड़की आपकी खुली होनी चाहिए, जिससे जो कार्बन मोनोक्साइड उस अंगीठी में जो कोयला या लकड़ी जल रही है, उसके जलने से जो कार्बन मोनोक्साइड पैदा हो रही है उसको निकलने का एक जरिया होना चाहिए। एक कहीं पर भी खुली जगह होनी चाहिए, थोड़ी सी आधी खिड़की आप खुली रखें जिससे वो कार्बन मोनोक्साइड निकल सके। अगर वो नहीं निकलती है तो उस कमरे में जो लोग बैठे हैं उनको बहुत नुकसान हो सकता है। तो जहां आप अपना सर्दी से बचाव कर रहे हैं वहीं पर ध्यान रखें कार्बन मोनोक्साइड से भी आप जो है अपना बचाव करें। अब देखिए कई सारी बातें हमने कर ली कि घर में रहते हुए भी आपको किस किस जगह पर कैसे कैसे नुकसान हो सकता है और आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। आप अपना पाठ पढ़िए, जो आपके पाठ में दी गई बातें हैं, बहुत सी और बातें दी गई हैं, मैंने तो संक्षिप्त में उन बातों का के बारे में आपसे चर्चा की है, लेकिन बहुत सारी और बातें हैं, आपको जानकारी अपने पाठ में मिलेगी, तो उसको आप पढ़िए, अपना ज्ञान आप बढ़ाइए। और अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को का एक्सीडेंट हो ही जाता है, उसे चोट लग ही जाती है, तो आप क्या करें। तो प्राथमिक उपचार करना बहुत जरूरी है। अब जब हम प्राथमिक उपचार की बात करते हैं तो इसका क्या अर्थ है। प्राथमिक है का अर्थ ही है सबसे पहला। तो जब आपने देखा कि किसी को चोट लग गई, कोई जल गया या कहीं पे कट गया या कोई भी और उसको नुकसान हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। जो सबसे पहला उपचार किया जाता है उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। ठीक है, तो इसके क्या नियम है। कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का आपको पालन करना ही चाहिए। तो सबसे पहला नियम तो ये है कि प्राथमिक उपचार का एक बॉक्स आप बनाइए, जिसे हम फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। हर घर में ये फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। अच्छा, बना तो लिया आपने, लेकिन वो ऐसी जगह आपने टिका के रखा है कि जब जरूरत पड़ रही तो आपको मिल ही नहीं रहा है। तो आप उस फर्स्ट एड बॉक्स को ऐसी जगह पर रखें जहां पर सबको, परिवार में सबको पता है कि फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ रखा है और सभी लोग उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं, उसको उठा सकते हैं, ले सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक्सेसिबल होना चाहिए, ऐसी जगह आप रखें कि सभी लोग जो है उसको यूज कर पाए। अच्छा, जब दुर्घटना होती है तो सबसे पहले आप क्या करें। दुर्घटना जिस व्यक्ति की हुई है उसके आसपास अगर भीड़ लग गई है तो भीड़ को आप अलग करें, तितर बितर करें, क्योंकि जितने लोग वहां पे होंगे उसकी वजह से एक तो जो पेशेंट है जिसके साथ दुर्घटना हुई है उसको घबराहट होने लगती है, और ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो भी कम होने लगती है। तो इसलिए भीड़ आप कम करें। जो आदमी दुर्घटनाग्रस्त है उसको आप सांत्वना दें कि नहीं, सब कुछ ठीक है, हम आपका उपचार कर रहे हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, डॉक्टर को हम बुला रहे हैं, एम्बुलेंस को हम बुला रहे हैं, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। अगर वो ऐसी जगह पे है जहां पर उसको और नुकसान हो सकता है, फर्दर उसको कोई चोट या कुछ हो सकता है, तो आप उसे सुरक्षित जगह पर ले आए। अगर उसकी सांस रुकने का डर है, उसको सफोकेशन होने का डर है, तो आप उसको आप ध्यान दें। अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो ब्लीडिंग को कैसे रोक सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, उसकी तरफ आप जो है ध्यान दीजिए। तो इसी क्रम में अगर आप जो है उसको रखेंगे, अपने काम करेंगे, तो आप उसको बचा सकते हैं, उसको उसकी हेल्प कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि आप फर्स्ट एड बॉक्स बनाने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप रखेंगे क्या क्या, है ना। तो आप उसमें सबसे पहले तो कुछ पट्टियां रखिए, कुछ बैंडेड आप रख सकते हैं, जो छोटी मोटी कट होती है उस पर आप लगा सकते हैं, कुछ एंटीसेप्टिक पाउडर और क्रीम आप रख सकते हैं। अगर किसी को का फ्रैक्चर हो जाता है या मोच आ जाती है तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए आप कुछ मैगजीन वगैरह उसके साथ रख सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हमने बात की हैं आज कि किस तरह से आपके घर में कोई अगर ऐसे स्थान है जहां पर दुर्घटना हो सकती है तो उसको आप पहले तो देखें, उसका आकलन करें, उस जगह को आप सुरक्षित करें। इन सब बातों का आप ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आप अपने आपको, अपने परिवार में जो बड़े हैं छोटे हैं सभी को आप सुरक्षित कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। पाठ को पढ़िए, उसमें और बहुत सी जानकारी आपको मिलेगी जिससे आपको बहुत लाभ होगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि गृह विज्ञान के जो हमारे शिक्षार्थी हैं उनका गृह विज्ञान पढ़ने का के जो उद्देश्य हैं उनको आप पूरा करें, वो क्या उद्देश्य है कि जो भी आपको जानकारी, जो ज्ञान आपको गृह विज्ञान पढ़कर मिलता है, उसे आप अपने जीवन में उतारें, अपने परिवारजनों के साथ में उसको शेयर करें, और उसके बाद जो आपका आस पड़ोस है, जो आपके मिलने वाले हैं, उनके साथ भी आप इस ज्ञान को शेयर करें, उनके साथ इस ज्ञान को साझा करें, ताकि जो पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी जिंदगी में ला रहे हैं उनसे वो भी लाभान्वित हों, वो भी अपनी जिंदगी को संवार सके। तो कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप जिस तरह से अपनी जिंदगी जी रहे हैं वो खराब है, लेकिन हर जगह जब आपको व्यवस्थित ढंग से करने का कहीं सुझाव मिलता है तो निश्चित रूप से आप अपने उसे जीवन में अपनाएं, उसे अपने जीवन को और भी उपयोगी बनाएं और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप अपने जीवन में जो सुरक्षात्मक उपाय हमने आज बात की है उनको अपनाएंगे और उससे लाभान्वित होंगे। नमस्कार।